सुलेमान का राज्य, सुलेमान की बुद्धिमत्ता। अध्याय तीन, भूमिका। सुलेमान मिस्र के राजा फिराउन का दामाद बन गया। उसने फिराउन की पुत्री से विवाह किया और जब तक उसने अपना महल, प्रभु का निवास और यरूशलेम की चार दीवारी नहीं बनवा ली, तब तक उसे दाऊद नगर में ही रखा। लोग अब तक पहाड़ी पूजा स्थानों पर उपासना किया करते थे, क्योंकि उस समय तक प्रभु के नाम पर कोई मंदिर नहीं बनवाया गया था। सुलेमान को प्रभु से प्रेम था और वो अपने पिता दाऊद के विधानों के अनुसार कार्य करता था, लेकिन वो पहाड़ी पूजा स्थानों पर बलि चढ़ाता और धूप दिया करता था। प्रभु से विवेक का वरदान। सुलेमान बलि चढ़ाने गिबोन गया, क्योंकि ये बलि चढ़ाने की मुख्य पहाड़ी थी। सुलेमान ने वहां की वेदी पर 1000 होम बलियां चढ़ाई। गिबोन में प्रभु रात को सुलेमान को स्वप्न में दिखाई दिया। ईश्वर ने कहा, बताओ मैं तुम्हें क्या दे दूं? सुलेमान ने ये उत्तर दिया, तू मेरे पिता अपने सेवक दाऊद पर बड़ी कृपा करता रहा। वो सच्चाई, न्याय और निष्कपट हृदय से तेरे मार्ग पर चलते रहे, इसलिए तूने उन्हें एक पुत्र दिया जो अब उनके सिंहासन पर बैठा है। प्रभु मेरे ईश्वर, तूने अपने इस सेवक को अपने पिता दाऊद के स्थान पर राजा बनाया, लेकिन मैं अभी छोटा हूं। मैं ये नहीं जानता कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं यहां तेरी चुनी हुई प्रजा के बीच हूं। यह राष्ट्र इतना महान है कि इसके निवासियों की गिनती नहीं हो सकती। अपने इस सेवक को विवेक देने की कृपा कर, जिससे वो न्यायपूर्वक तेरी प्रजा का शासन करे और भला तथा बुरा पहचान सके। नहीं तो कौन तेरी इस असंख्य प्रजा का शासन कर सकता है? सुलेमान का यह निवेदन प्रभु को अच्छा लगा। प्रभु ने उससे कहा, तुमने अपने लिए न तो लंबी आयु मांगी, न धन संपत्ति और न अपने शत्रुओं का विनाश। तुमने न्याय करने का विवेक मांगा है, इसलिए मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। मैं तुमको ऐसी बुद्धि और ऐसा विवेक प्रदान करता हूं कि तुम्हारे समान न तो पहले कभी कोई था और न बाद में कभी कोई होगा। और जो तुमने नहीं मांगा, मैं वो भी तुम्हें दे देता हूं, अर्थात ऐसी धन संपत्ति तथा ऐसा ऐश्वर्य जिससे कोई भी राजा तुम्हारी बराबरी नहीं कर पाएगा। और यदि तुम अपने पिता दाऊद की तरह मेरे नियमों तथा आदेशों का पालन करते हुए मेरे मार्ग पर चलोगे, तो मैं तुम्हें लंबी आयु प्रदान करूंगा। सुलेमान की नींद खुल गई और उसने समझ लिया कि मैंने स्वप्न देखा है। यरूशलेम में लौट आने पर उसने प्रभु की मंजूषा के सामने होम बलियां और शांति बलियां चढ़ाई और अपने सब सेवकों को भोज दिया। विवेकपूर्ण निर्णय करता। एक दिन दो वेश्याएं राजा के सामने उपस्थित हुईं। पहली स्त्री ने कहा, महाराज हम, मैं और ये स्त्री एक ही घर में रहती हैं। ये घर में ही थी जब मुझे एक बच्चा हुआ। मेरे प्रसव के 3 दिन बाद इस स्त्री को भी एक बच्चा हुआ। हम एक साथ थीं और हमारे साथ घर में कोई दूसरा नहीं था, केवल हम दोनों घर में थीं। अब रात को इसका बच्चा मर गया क्योंकि ये उस पर लेट गई थी। आधी रात को उठकर वो मेरे बच्चे को मेरे पास से उठा ले गई। जब मैं आपकी ये दासी सोई हुई थी और उसे अपनी गोद में रख लिया, फिर यह अपने मृत बच्चे को मेरी गोद में रख गई। जब मैं सवेरे अपने बच्चे को दूध पिलाने उठी तो मैंने देखा कि वो मरा पड़ा है, लेकिन जब अधिक प्रकाश हो जाने पर मैंने उसकी ओर ठीक से देखा तो मालूम हुआ कि यह बच्चा मेरा नहीं है। इस पर दूसरी स्त्री कहने लगी, नहीं, मेरा बच्चा जीवित है, तुम्हारा बच्चा मरा है। पहली स्त्री ने कहा, नहीं, तुम्हारा बच्चा मरा है, मेरा बच्चा जीवित है। इस प्रकार वे दोनों राजा के सामने झगड़ती रहीं। इस पर राजा ने कहा, ये कहती है कि मेरा बच्चा जीवित है और तेरा बच्चा मरा है, और वो कहती है कि नहीं, तेरा बच्चा मरा है और मेरा बच्चा जीवित है। तब राजा ने एक तलवार लाने की आज्ञा दी। तलवार राजा के पास लाई गई। तब राजा ने आदेश दिया, इस जीवित बच्चे के दो टुकड़े कर दो, और एक टुकड़ा इसको दे दो और दूसरा उसको। जिस स्त्री का वो बच्चा जीवित था, उसका हृदय वात्सल्य से भर गया और उसने राजा से कहा, महाराज, जीवित बच्चे को उसको दे दीजिए, उसका वध मत कीजिए। परंतु दूसरी स्त्री ने कहा, नहीं, वो न मेरा रहे न तेरा, उसके दो टुकड़े कर दो। इस पर राजा ने ये निर्णय दिया, जीवित बच्चा पहली स्त्री को दे दो, उसे मत मारो, क्योंकि वही उसकी मां है। जब सारे इज़राइल ने राजा का यह निर्णय सुना, तब लोग आश्चर्यचकित हो उठे, क्योंकि उन्होंने देखा कि राजा में न्याय करने की ईश्वरीय प्रज्ञा है।